भवतु सहनौनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
अर्जुन उवाच श्रीस्थित
अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम् स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदिक्किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्।
हम लोग देख रहे थे कि स्थित प्रज्ञ की दो स्थिति के बारे में यहाँ बताया गया है। पहली लाइन जो कह रही है स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, जब वो समाधिस्थ है तब उसका आप कैसी भाषा, भाषा मतलब परिभाषा, कैसे उसका वर्णन करोगे। एक तो समाधि स्टेट मतलब मन के जब परे चला जाता है, मन नॉट अवेलेबल। दूसरा स्थितदिम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत कम, जब व्युत्थित अवस्था में है, व्युत्थित अवस्था विशेष उत्थित मतलब जागा हुआ। कैसे जागा हुआ, विशेष रूप से जागा हुआ। हम लोग सब जागे हुए हैं मगर वो स्थित दी जो है, स्थित प्रज्ञ जो है वो विशेष रूप से एक जगह जागा हुआ है। तो जब जागता है मतलब जब मन के साथ होता है तब उसको कैसे आप वर्णन करोगे। कहने का मतलब है कि जब वो समाधि स्टेट में रहता है तब उसका वर्णन बताइए, और जब वो जागता है तब भी उसकी वर्णन बताइए। कैसे वो बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, व्यवहार कैसे करता है। देखो स्थित प्रज्ञ और अज्ञानी में बस इतना ही फर्क है कि उसका विजन बदल चुका है, बाहर से कुछ नहीं बदलता है, केवल उसका विजन जो है बदलता है, मन के अंदर बदलाव आता है। अब मन के बदलाव आने के कारण उसका विजन अब क्या हो गया, अब उसका अनुभव क्या है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है, वो कैसे अभी स्थित है, ये बताइए हमको, एक नंबर। और दूसरा लोगों के साथ में व्यवहार कैसा करता है। देखो स्थितदि या स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ जो भी होता है उसके बाद उसका शरीर गिर नहीं जाता है, शरीर रहता है। तो हमको ये बताइए कि उसका व्यवहार कैसा है। देखो जब आदमी अकेला रहता है ना तब तो मौन रहता है, चुप रहता है, मगर जब व्यवहार रहेगा तब उसको बोलना पड़ेगा ना। तो दो स्टेट यहां पर बतानी है। पहली स्टेट यह है कि जब वो मन के परे चला जाता है समाधिस्थ, तब उसकी स्थिति बताइए, उसका वर्णन कीजिए। और जब वो मन के साथ है तब वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसका व्यवहार कैसा है, इसको भी आप बताइए। बहुत अच्छा। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर एक और पॉइंट देखने का है कि ये प्रश्न कौन कर रहा है, किसने प्रश्न किया?
अर्जुन।
अर्जुन ज्ञानी है क्या ज्ञानी है? एक अज्ञानी का ये प्रश्न है। एक अज्ञानी को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, क्योंकि दोनों पोल अपार्ट है एकदम। स्थित प्रज्ञ जो है वो अंतर्मुखी है और अज्ञानी बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है। किसी अज्ञानी को कहो कि तुम आनंद स्वरूप हो, मानेगा? तुम ब्रह्म हो, मानेगा वो? ना, बहुत मुश्किल है। एक अगर हम किसी को, सबकी देखो अलग अलग वेव लेंथ होती है, सबकी अपनी अलग अलग वेव लेंथ है। जैसे एक बच्चा बैलून देखता है और एक बड़ा आदमी देखता है, सबकी समझ अलग अलग है। बैलून अगर फट जाता है, बच्चा रोने लगता है, बड़ा तो नहीं रोता है, समझ अलग अलग है। एक पिता ने अपने बच्चे से पूछा, चलो आज बैठो, आज तुमको हम जीवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब वो बच्चे को समझाना चाहता था कि भाई जिंदगी इतनी आसान चीज नहीं है, तुम जैसे खेल कूद रहे हो ऐसे नहीं है। तो बच्चे को कहा कि चलो बैठो, आज जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चा कहता है, पूछो क्या प्रश्न है आपका जीवन के बारे में, मैं बताता हूं। वो अपनी समझ से कहता, बोलो क्या आपको जानना है जीवन के बारे में, मैं बताता हूं। देखो एक पेंटिंग होती है ना, तो पेंटिंग के अंदर आप सामने पेंटिंग को सब देख सकते हो, मगर उसके पीछे केवल एक साइड उसको आप देख पाते हो ना। अब आप टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन कह सकते हो, मगर उसके पीछे तो आप नहीं देख सकते। एक स्कल्पटर ने एक मूर्ति बनाई, मूर्ति को आप पीछे जाके देख सकते हो, और पेंटिंग के पीछे जाके देख सकते हो? नहीं देख सकते कुछ। मूर्ति के अंदर झांक के देख सकते हो? नहीं घुस सकते आप। तो भगवान जो है एक स्थित प्रज्ञ का वर्णन करने जा रहे हैं, और वो वर्णन है उसके मन का। बाहरी वर्णन कुछ नहीं मिलेगा इसमें। 18 श्लोक के अंदर उसके बाहर का कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा, जो भी वर्णन है उसके अंदर का है। और भगवान एक शब्द चित्र बनाने जा रहे हैं। भगवान तो है नहीं है, मगर वो शब्द चित्र से आपको चित्र बना के दिखाएंगे, और ये बहुत कठिन कार्य है। आप लोग रंगोली बनाते हो ना, रंगोली तो फ्लोर के ऊपर रंगोली बनाना आसान है, थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट फूल की पंखुड़ियों से रंगोली बनाना। उससे डिफिकल्ट है अगर कोई आपको कह दे कि आप पानी के ऊपर रंगोली बनाओ। बनती है रंगोली पानी के ऊपर में। हमारे गुरुदेव गए एक जगह, रंगोली बहुत मेहनत से बनाई थी रंगोली, कमरे के अंदर घुसे, रंगोली देख रहे हैं, किसी ने पंखा चला दिया। भगवान हमारे मन में चित्र बनाने जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है। एमसी होता है ना, एमसी का काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है। जब कलाकार भीतर में तैयार हो रहा है, तब ऑडियंस की नजर को पकड़ के रखना डिफिकल्ट। इसी तरह से भगवान भी अब चित्रण करने जा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, कैसे है, इसका चित्रण भगवान करेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर पोर्शन है हमारे गीता का, 18 श्लोक, और गांधी जी अपनी रोज सामूहिक प्रार्थना के अंदर इसका पाठ करते थे। और इसके साथ में ईशावास्य का पहला मंत्र जो है उसको वो पढ़ते थे, बहुत पॉपुलर है। तो हमने अभी तक जो देखा है कि फर्स्ट लाइन में वो जानना चाहते हैं कि ज्ञानी का विजन क्या है, समाधिस्थ उसका विजन बताइए। दूसरी लाइन में उसका रिएक्शन, उसके व्यवहार की बात की गई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि तीन वर्ड इसके अंदर दिए हुए हैं जिसका मतलब एक ही है, स्थित प्रज्ञ, स्थित दि और समाधिस्थ। और हमने आपको बताया था कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि ये श्रवण, मनन और निधि ध्यासन को इंगित करते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। वर्णन किसके लिए है? अज्ञानी के लिए है। क्यों अज्ञानी के लिए? क्योंकि प्रश्नकर्ता अज्ञानी है और ये शब्द चित्र बनने जा रहा है। आप भी जो है इसको अपने मन के अंदर उसका चित्र बनाइए। इसके अंदर जितने भी गुण बताए गए हैं, मन की स्थिति जो बताई गई है वो ज्ञानी के लिए सहज है, उसके लिए उसको प्रयत्न नहीं करना है। मगर अज्ञानी को अगर अपने अंदर उन गुणों को लाना है तो उसके अंदर उसको प्रयत्न करना होगा। देखो ये हमारे जो है ना, बाजार में अगर जाओ तो एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे हॉर्स पावर का क्या कहते हैं, ब्रिटिश हॉर्स पावर BHP, उसके हिसाब से मानदंड करते हैं ना, ये हॉर्स पावर कम है, ये ज्यादा है, एक मानदंड होता है। या आजकल कंप्यूटर के अंदर आता है तो उसके अंदर वो लोग रेटिंग दे देते हैं, 5, 4, 3, 2 रेटिंग, सब अपने अपने स्टैंडर्ड से रेटिंग करते रहते हैं। तो ये एक ऐसे पुरुष का मन का चित्रण है जो कि स्टैंडर्ड है। हमको अपने मन से उसको देखना होगा कि मेरा मन उसके कितने नजदीक तक जाता है। स्टैंडर्ड जो है ना, वो स्टैंडर्ड कौन है? स्टैंडर्ड उस स्थित प्रज्ञ का मन है जिसका चित्रण भगवान करने जा रहे हैं, और उससे मिला के हमको अपने आप को देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। उसको देख के आप दूसरे का नहीं आप सोचिएगा, ये 10% स्थित प्रज्ञ है, वो 50% स्थित प्रज्ञ है, नहीं, दूसरे को नहीं देखना है आपको। किसको देखना है? हमारा मन कैसा है, ये स्टैंडर्ड भगवान बता रहे हैं कि ये देखो ये स्टैंडर्ड है, इससे कंपेयर करो। राम जी के बारे में ऐसा कहा गया है, साधु बात निकस नाय, ए साधु अगर तुमको अपने को देखना है कि तुम किस जगह खड़े हो तो राम के साथ में तो अपना देखो, राम के साथ अपने को मिलाने का चेष्टा करो कि तुम किस जगह खड़े हो, राम की बराबरी में कहां हो। तो ये देखते हुए अब हम लोग उसको देखते हैं कि उसका भगवान उत्तर क्या देते हैं। भगवान उवाच, यहां से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो था समाधिस्थ के बारे में, पहली लाइन का जो प्रश्न है उसके बारे में भगवान एक श्लोक के अंदर उसका वर्णन करते हैं, और बाकी जो तीन और प्रश्न हैं, किम प्रभासित, किम आसित, किम ब्रजित, इसका बाद में वर्णन आएगा। तो समाधिस्थ का वर्णन क्या है वो इसमें होने जा रहा है, यही मुख्य श्लोक है। समाधिस्थ का वर्णन मुख्य यही है।
श्री भगवान उवाच,
श्री भगवान उवाच,
प्रजहाति यदा कामान,
प्रजहाति यदा कामान,
सर्वान् पार्थ मनोगतान,
सर्वान् पार्थ मनोगतान,
आत्मन्नेवात्मना तुष्टः,
आत्मन्नेवात्मना तुष्टः,
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते,
स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते,
स्थित प्रज्ञस्त तदोच्यते। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं। अच्छा, स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा उसमें बताई गई है, अहम अस्मि परम ब्रह्म इति प्रज्ञा यस्य, मैं पर ब्रह्म परमात्मा ही हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं। ये अगर आपकी प्रज्ञा बन जाए, ये समझ बन जाए, ऐसी बूझ बन जाए आपकी कि मैं पर ब्रह्म परमात्मा मैं हूं, मेरे से दूसरा भिन्न नहीं है, तो वो स्थित प्रज्ञ है। समाधिस्थ अवस्था का वर्णन करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, यदा कामान सर्वान मनोगतान प्रजहाति पार्थ, पार्थ हे कुंती पुत्र, यदा जब प्रजहाति, जब आपकी सारी कामनाएं खत्म हो जाएं, प्रजहाति यदा कामान, जितनी आपकी इच्छाएं, कितनी इच्छाएं, सर्वान, सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाएं, कहाँ है मनोगतान, मन में, आपके पेट में और आपके हाथ में कामना नहीं होती है, कामना कहाँ है, मन के अंदर, मनोगतान, तब आत्मनिवे आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदा उच्यते, तदा तब आप जो है उसको बोलोगे ये स्थित प्रज्ञ है। पहली कंडीशन क्या हुई, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, जब आपकी सारी कामनाएं खत्म हो गई। एक ने कहा हमारी कामना खत्म हो गई, क्या क्या कामना खत्म हो गई, बोले हमने मीठा खाना छोड़ दिया, मेरी कामना खत्म हो गई, या मैंने खिलौनों से खेलना छोड़ दिया, लो खत्म हो गई कामना। एक दूसरा व्यक्ति बोला, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी सारी कामना खत्म हो गई, बोला कैसे, बोले जब मैं नींद में रहता हूं तो कोई कामना नहीं रहती है, इसलिए मैं स्थित प्रज्ञ हूं, कामना खत्म हो गई हमारी। तो देखो पाठ कामना जो खत्म हो जाना है उसका यहां से कोई संदर्भ नहीं है, उससे नहीं मिलता है ये। नींद के अंदर सारी कामना खत्म हो जाना वो भी बात नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि नींद में तमोगुण रहता है और तमोगुण के अंदर उस टाइम ऐसी हमारी अवस्था होती है, ना हम अपने आप को जानते हैं और ना भगवान को जानते हैं। हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी है,
जागृत,
स्वप्न, सुसुप्ति। देखो जागृत अवस्था में भी हम भगवान को नहीं जानते हैं मगर दुनिया को जानते हैं, स्वप्न में भी हम भगवान को नहीं जानते हैं मगर कुछ कुछ हम स्वप्न देखते हैं, कुछ कुछ जो है दिखाई पड़ता है, कुछ कुछ हम देखते हैं, मगर सुसुप्ति में क्या होता है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, वर्ल्ड को भी नहीं जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि हमारी सारी कामनाएं, नींद के अंदर कोई कामना नहीं रहती, हम तो आराम से चैन से सोते हैं, नींद के अगर कामना हो जाए तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, सोना मुश्किल हो जाएगा, माइंड एजिटेशन शुरू हो जाता है, तो वो भी नहीं। तो कौन सी कामना, किस स्टेट की बात कर रहे हैं आप, बोले जागृत अवस्था में अगर आपकी सारी कामनाएं खत्म हो जाए तब हम आपको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। जागृत अवस्था में सारी कामना खत्म हो जाना इम्पॉसिबल टास्क, कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, एक व्यक्ति गया एक स्थित प्रज्ञ के पास में, लोग कहते हैं ये स्थित प्रज्ञ है, इनके पास गया, वो जाके देखता है वो आदमी खाता भी है, पानी भी पीता है, सोता भी है, टहलता भी है, बोले ये कैसे हुआ स्थित प्रज्ञ, जो हम करते हैं वो तो वो भी करता है, कैसे उसको कहते हैं कि सर्वान कामान उसकी खत्म हो चुकी है। तो हमको पहले ये जानना होगा कि ये कामान का मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। देखो खाना पीना सोना चलना उठना बैठना ये तो चलता रहेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कामना के अंदर ये नहीं आता। क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि हमारा शरीर भी सत्व रजस तमो गुण से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, और इसको पंच महाभूत की दरकार होती है, इसको अन्न पानी चाहिए, बिना अन्न पानी के ये रह नहीं सकता। हमारे शास्त्र में एक जगह लिखा है कि अगर कोई आदमी 15 दिन तक अगर खाना नहीं मिले, उसको पानी भी नहीं पिए, तो 15 दिन के बाद में अगर उसको बोलो कि भाई अच्छा आप जरा मंत्र उच्चारण करो, बोला भूल जाएगा, वो नहीं याद आएगा। तो खाना पीना तो देना ही होगा, खाना पीना नहीं दोगे तो ये शरीर नहीं चलेगा। तो यहां पर कामना खाने पीने की बात की नहीं की जा रही है, ये तो पहले समझ लेना है, नहीं तो हम अपनी परिभाषा बनाते रहते हैं। अरे ये स्वामी जी तो वहां जाते हैं, होटल में बैठ के खाते हैं, ये स्वामी है। अरे खाना तो होगा, घर में खाए थे जहां खाए। कामना फिर क्या है? कामना वो है कि जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं और ये जानता हूं कि ये मेरे को सुख देगा, ये है कामना। कामना वो है जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूं और मेरी ये धारणा है कि ये सुख देगा, ये व्यक्ति, ये वस्तु या ये प्राणी मेरे को सुख देगा, उसको हम कामना कहते हैं। अगर हम पानी, हमें प्यास लगी है, हम पानी से प्यास बुझा सकते हैं, मगर हम कहें कि हमको 7-अप चाहिए तब मेरी प्यास बुझेगी, ये कामना होगी। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पानी प्यास से बुझ सकती है, मगर आप अगर कहो कि मेरे को तो बस इस किस्म का पानी चाहिए तब मेरी प्यास बुझेगी, वो कामना बन गया। भिक्षाम देही, आपने भिक्षा मांगी, आपको जो मिला ले लो, मगर आप ये कहोगे मेरे को भिक्षा में ये चाहिए, कामना बन गई। उसके बाद कहते हैं सित प्रज्ञ में कोई कामना नहीं है, क्या यह संभव है? अगर है तो कैसे संभव है? स्थित प्रज्ञ में कोई कामना नहीं है। देखो हर कामना के पीछे हम क्या सोचते हैं कि ये हमारी पूर्ण हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। मगर स्थित प्रज्ञ को कामना का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो मिल गया है। स्थित प्रज्ञ को वो भंडार मिल गया जहां पर कि सारे आनंद जहां से स्फुरित होते हैं, इसलिए उसको कामना नहीं है। एक उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका अगर पेट भरा हो, उसके बाद में आपको 56 भोग कोई लाके दे, आप खाओगे? कामना होगी? नहीं होगी। ठीक उसी तरह से स्थित प्रज्ञ को जो है उसका पेट भर गया, पेट भर गया मतलब उसको आनंद का भंडार मिल गया है, अब उसको छोटी छोटी चीजों के आनंद की कोई दरकार नहीं है, इसलिए उसके पास में कोई कामना नहीं है। और हमारे जितनी भी कामनाएं हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। अरे उसको तो सुख का स्रोत मिल गया, अब और क्या सुख चाहिए उसको? उसको कोई भी सुख नहीं चाहिए। और कठोपनिषद में कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये मनुष्य जो है वित्त से कभी भी तर्पणीय नहीं, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। शास्त्र तो यहां तक कह देते हैं कि अगर आपको सारी पृथ्वी का मालिक बना दिया जाए फिर भी आप बोलोगे एक और पृथ्वी मिल सकती है क्या? कभी भी। याज्ञवल्क्य जी एक ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, गार्गी और कात्यायनी। अब उनको जो है आत्मसुख मिल चुका था, अब वो वहां से छोड़ के जाना चाहते थे, तो उन्होंने दोनों पत्नियों को कहा कि हमारी ये धन संपत्ति है, इतना हमने कमा के रखा हुआ है, इतना हमको उपहार वगैरह राजाओं से मिला हुआ है, ये आप लोग बांट लो, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं जाता हूं, सब कुछ देने को तैयार, कुछ साथ में नहीं लेंगे। तो गार्गी ने पूछा कि भगवान ये बताओ, आप ये सब छोड़ के जा रहे हो तो आपको क्या इससे कुछ बड़ा सुख मिला कहीं पर? अगर बड़ा सुख मिला है तो हम भी आपके साथ आएंगे, हमको भी नहीं चाहिए ये, आप तो छोड़ने को तैयार हो ना। बोला हाँ। तो मिला आपको? बोला हाँ मिला, सारा धन छोड़ने को तैयार। वो है वो आत्मसुख, वो उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, और उस ब्रह्मानंद के अंदर विषयानंद इंक्लूडेड है। अच्छा, ये कामना रहित हम कब होंगे? कामना रहित हम तभी होंगे जब हम ये जाने कि मैं ही सुख स्वरूप हूं। जब तक हम सुख दूसरों में देखते रहेंगे, व्यक्ति में देखते रहेंगे, वस्तु में देखते रहेंगे, परिस्थिति में देखते रहेंगे, तब तक हम बाहर जाते रहेंगे। जब हम ये जान लेंगे कि मैं सुख स्वरूप हूं, फिर कामना नहीं है। देखो, कामना यहां पर खाने पीने की बात नहीं हो रही है। ज्ञानी भी खाना खाएगा, पानी पिएगा, सोएगा, टहलेगा, सब कुछ करेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मगर ज्ञानी कभी ये नहीं सोचता है कि ये दुनिया की कोई भी वस्तु मेरे को सुख देगी। वो जानता है कि मैं ही सुख स्वरूप हूं। अच्छा, दूसरा तरीका समझने का, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तुष्ट मीन्स संतुष्ट। हम लोग भी संतुष्ट होते हैं, रोज संतुष्ट होते हैं। अभी खाना खाया, संतुष्ट हो गया ना, अब इसके बाद नहीं खा सकते हम, मगर चार घंटे के बाद वो संतोष खत्म हो गया, संतुष्टि खत्म हो गई, फिर खाना चाहिए। तो परमानेंट तुष्टि नहीं आती है। मगर आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, जो अपनी आत्मा में ही रमन करता है। क्यों रमन करता है? क्योंकि वो ही भंडार है, आनंद का भंडार वो है, उसको वो भंडार मिल गया है। अब वो कहां रेवल करता है? आत्मा में ही रेवल करता है, उसको नहीं चाहिए कुछ बाहर की चीज। आत्मनिये आत्मा तो, इसलिए दो चीजें यहां पर देखने वाली है कि क्वालिटी बताई गई स्थित प्रज्ञ की, एक तो है संतुष्टि आत्मतुष्टि, और दूसरी निष्कामता। दो चीजें यहां बताई गई हैं। और यहां पर भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी लिखते हैं, वह अपने अंतर आत्मस्वरूप में ही किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा न रखकर, देखो ये स्थित प्रज्ञ करता है, अपने अंतर आत्मस्वरूप में किसी बाह्य लाभ की अपेक्षा, बाह्य वस्तु के ऊपर में वो डिपेंडेंट नहीं है, रखकर अपने आप संतुष्ट रहने वाला, उसको संतोष है, अर्थात परमार्थ दर्शन रूप अमृत रस लाभ से तृप्त। आत्मदर्शन ही आपका परमार्थ को प्राप्ति है, और उसी के अंदर जो है वो रस है, अमृत रस वहीं पर है। अन्य सब अनात्म पदार्थों से अलम बुद्धि वाला, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं दुनिया की हैं, वो सब क्या है? अनात्म वस्तुएं हैं, उसमें अलम बुद्धि, अलम बुद्धि बस, और नहीं चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो ना, लोग सर्व करते हैं, करते करते तब बस और नहीं देना, अलम, अलम कहते हैं उसको, बुद्धि को अलम बुद्धि और नहीं चाहिए। उसकी अलम बुद्धि कहाँ है? सब अनात्म वस्तु में अलम बुद्धि, ये मेरे को और नहीं चाहिए। तृष्णा रहित पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गई है। देखो यही बेसिक है, आपको बराबर ये करते रहना होगा, आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा, आत्मा अनात्मा, ये विवेक करते 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 आपकी बुद्धि स्थिर हो गई। क्या स्थिर हो गई? कि आत्मा आनंद स्वरूप है और अनात्मा दुख स्वरूप है, बस ये बुद्धि आपकी स्थिर हो गई। फिर क्या होगा? यानी ज्ञानी कहा जाता है, वो आदमी ज्ञानी है, कोई तकलीफ है समझने में? दुख कहां से आता है? आत्मा से
नहीं।
दुख आता है अनात्मा से। अनात्मा सुख देता है?
नहीं,
अनात्मा सुख नहीं देता। तो ऐसी स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। अनात्मा कभी हमको सुख नहीं देगा, अनात्मा बराबर दुख देगा। और ये संसार क्या है? सारा अनात्मा है। इसलिए भगवान ने इसको क्या कहा? सुखालय दुखालय कहा। देखो ऐसी प्रज्ञा आपकी बन जानी चाहिए एकदम स्थित, कि हमको दुख कहां से हो रहा है? अनात्मा। अभिप्राय ये है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुत्र धन और लोक की समस्त तृष्णाओं को त्याग देने वाला सन्यासी ही आत्माराम आत्मक्रीड और स्थित प्रज्ञ है। मतलब ईष्णा त्रय जिसने छोड़ दिया, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा और लोकेष्णा, जिसने तीनों ईष्णाएं छोड़ दी, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। देखो यहाँ पर बार बार इसको समझ के रखना कि उस खाने पीने को इसके अंदर मत जोड़ देना कभी, कि स्थित प्रज्ञ है तो खाएगा नहीं। लोगों का ऐसा ऐसा विचार होता है, स्थित प्रज्ञ है तो पैदल चलेगा, गाड़ी में नहीं बैठेगा, स्थित प्रज्ञ है तो सोएगा नहीं, पेड़ के नीचे सोएगा, घर में नहीं सोएगा, ऐसा लोग अपनी परिभाषा बनाते हैं। स्थित प्रज्ञ ने अगर पिज्जा खा लिया तो स्थित प्रज्ञ नहीं है। बहुत लोग ऐसी परिभाषा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर प्रारब्धवश उसको अगर पिज्जा पास्ता मिलता है तो वो तो ये नहीं कहता मेरे को पिज्जा पास्ता लाके दो, वो तो कहता भिक्षा में दे ही। आपने बोला आज आपको पिज्जा मिलेगा,
भिक्षा में
तो हमको क्या है, हमारा प्रारब्ध है, हमें मिला। तो आप जो है इसको डिमार्केशन ठीक ठीक समझ लेना। ये सब देखो हम भीतर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, बाहर का कोई भी हम स्थित प्रज्ञ का कोई लक्षण नहीं बता रहे हैं। उसके मन की अवस्था क्या है, उसको बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। वो ये जानता है कि मेरा सुख अनात्म वस्तु में नहीं है, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं परमात्मा परम ब्रह्म ही हूं। डाउट भी नहीं है, ही का मतलब मैं ही हूं, कोई डाउट नहीं है उसमें। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदोच्यते, वो स्थित प्रज्ञ है।
दुखेष्वनुद्विग्नमनाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते।
सही, अर्जुन का प्रश्न था स्थित प्रज्ञ के बारे में। अर्जुन किसको कहते हैं? जो सीधा है, जिसका मन के अंदर में टेढ़ापन कुछ नहीं है, वो व्यक्ति, वो शिष्य जो गुरु के पास में सीधा है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहा है, ऐसा नहीं। गुरु के सामने में जो शिष्य जाता है वो उसको अर्जुन होना होगा, उसको सीधा बनना पड़ेगा। मन में जो चल रहा है वही उसको बोलना पड़ेगा। मगर संसार में व्यक्ति लोग क्या करते हैं, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और बोलेंगे करने के टाइम में, और तीनों गड़बड़ है, एक लाइन में नहीं है। कबीरदास जी ऐसे स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपनी मड़ी में आप में डोलूं खेलूं सहज स्वेच्छा। अपनी मड़ी में अपने आप खेल रहा है, स्वेच्छा से अपने मन से खेल रहा है। युगन युगन हम योगी, वो सोचता है कि अरे मैं तो योगी युगन युगन योगी, अपनी मड़ी में आप खेलू ना ही ना कोई इच्छा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। अब कौन सी इच्छा? प्रजाति यदा कामान सर्वान, कि बस तू हमें सुख देगी, ऐसी कोई और इच्छा मेरे पास में नहीं है। अच्छा, हमारा अनुभव क्या है? हमारा अनुभव ये रहता है कि जब कामना कम होती है तो हम शांत होते हैं, जब कामना ज्यादा होती है, डिजायर ज्यादा होती है, तो हम एजिटेटेड रहते हैं, बराबर एजिटेटेड रहते हैं। पंचदशी के अंदर में तीन किस्म की वृत्ति बताई गई है, जो हमारे थॉट्स आते हैं ना, वो तीन किस्म की वृत्ति है, शांत, घोर और मूड। शांत सात्विक वृत्ति जब होगी, जब आपका मन, जब कामनाएं कम होगी, तब वो शांत वृत्ति होती है, उसको शांत कहते हैं। जब राजसिक होगा, घोर वृत्ति आएगी, बहुत काम करने की इच्छा होगी। और एक मूड वृत्ति है, तामसिक वृत्ति, वो मूड वृत्ति है। अब जो है दूसरा प्रश्न था, क्या प्रश्न था दूसरा? किम प्रभासेत, किम प्रभासेत, ये समाधि अवस्था का प्रश्न है कि व्युत्थित अवस्था का? पहला प्रश्न क्या था? समाधि अवस्था का। दूसरी लाइन में क्या है प्रश्न? किसके बारे में? जब वो जागा हुआ है, जब व्यवहार कर रहा है, जब मन के साथ में है, जब व्युत्थित है, विशेष रूप से उठा हुआ है, विशेष रूप से उठा मतलब जागृत है, मगर वो जागा कहां है? आत्मा में जागा हुआ है। तो ये व्युत्थित अवस्था का दूसरा प्रश्न है, किम प्रभासेत, इसका उत्तर भगवान 56 और 57 श्लोक में देंगे। तो पहला प्रश्न समाधि अवस्था, श्लोक नंबर 55। दूसरा प्रश्न था किम प्रभासेत, उसका उत्तर 56 और 57 में। दुखेशु अन उद्विग्न मना, दुखेशु, दुखेशु प्लूरल है, बहुवचन उसको कहते हैं। बहुवचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक, द्विवचन दो, दो से ज्यादा होगा था बहुवचन। दुखेशु, दुखेशु मतलब काफी दुख। दुखेशु अनुद्विग्न मना, किसकी बात चल रही है? स्थित प्रज्ञ की बात चल रही है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब दुख आता है तब वो उसका मन डोलता नहीं है, अनुद्विग्न है। सुखेशु विगत स्पृह, सुखेशु, सुखेशु ये भी बहुवचन है। बहुवचन मतलब द्विवचन से ज्यादा, कम से कम तीन या उससे ज्यादा भी हो सकता है,
बहुत सारे।
अच्छा, सुख की परिस्थिति आई तो वो ही नहीं चाहता है बनी रहे ऐसा। हमारी जैसे, अब जैसे मान लो अगर आपको कोई सुख की प्राप्ति हुई, हम लोग क्या चाहते हैं? ये बना रहे, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। अब दुख की परिस्थिति आती है तो मन छटपटाने लगता है, जाए जल्दी से, जाए जल्दी से, जाए। बीत राग भय क्रोध, राग, राग मीन्स अटैचमेंट, भय मीन्स फियर, क्रोध एंगर, बीत राग विगत, उसमें ये नहीं है, तीनों चीज नहीं है, राग भय क्रोध, ये तीनों चीज उसके वहां चली गई। स्थितधि मुनि उच्चते, स्थितधि ये अर्जुन का वर्ड था, भगवान ने वहां से लिया, स्थित प्रज्ञ उसने प्रश्न किया था ना, स्थितधि भी उसने किया उसके अंदर यूज, ये अर्जुन का है, भगवान मुनि कहते हैं उसी को। स्थितधि मुनि उच्चते, मुनि कौन है? जो मननशील है उसको मुनि कहते हैं। देखो एक चीज साफ हो गई यहां पर, भगवान एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है, और कहते हैं दुखेशु सुखेशु, उसके जीवन में भी कम से कम तीन दुख, ज्यादा भी हो सकते हैं, और सुख। एक चीज निश्चित हो गई कि ज्ञानी के जीवन में भी दुख और सुख आएगा। आप कभी ये प्रश्न नहीं करना किसी को कि ये ज्ञानी है तो इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ, ये ज्ञानी है तो इसको बीमारी क्यों लगी, इसको बुखार क्यों आया, नहीं ऐसा नहीं। दुख आएगा, सुख भी आएगा, क्यों आएगा आपको हमने बताया था एक बार, क्यों आएगा? क्योंकि हर मनुष्य का जन्म के पीछे, मनुष्य का जन्म आपको कब मिलता है? जब आपके पाप और पुण्य बराबर हो, पाप और पुण्य बराबर हो। पाप अगर ज्यादा होगा तो कहां जाना होगा? मनुष्य जीवन मिलेगा कहां? मिलेगा जीवन लोअर योनी। लोअर योनी क्या है? एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, उससे नीचे मिनरल किंगडम, पत्थर बनोगे, प्लांट बन जाओगे, कांट मूव, और नहीं तो एनिमल, पशु पक्षी। अगर पुण्य ज्यादा होगा तो देवता। मनुष्य जीवन कब मिलता है? जब दोनों बराबर होता है। अच्छा, हमने जितने भी कर्म किए हैं ना, उसमें से सब कर्म सबसे फल नहीं देते इमीडिएटली। जैसे हमको प्यास लगी, हमने पानी पी लिया, फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आज हमने काम किया, आज ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कई बार फल आते आते कई जन्म लग जाते हैं। और उदाहरण देते हैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह को सरसैया पर सोना पड़ा। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरे को अपने 60 जीवन याद हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे को क्यों सरसैया पर सोना पड़ा, बताओ। बोले हाँ, तुमको 60 ही याद है ना, मगर मेरे को याद है कि तुमने 61वें पुराने जन्म में ऐसा किया जिसके कारण तुमको ये करना पड़ा, ऐसा तुमको भोग करना पड़ रहा है। तो बहुत से हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों में से इस जीवन में भोग करने लायक कुछ कर्म फ्रक्टिफाई हो गए हैं, फल देने के लिए तैयार हैं। तो फल क्या होगा? पाप और पुण्य दोनों होगा। तो पाप कर्म का फल क्या आएगा? दुख आएगा। पुण्य का? अच्छा, ज्ञानी भी तो जन्मा है ना, ज्ञान होने के बाद में दूसरा जीवन नहीं होता है, सेकेंड टाइम बर्थ नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानी का जन्म हुआ है, इसलिए वो जन्म के समय अज्ञानी है। आया समझ में कि नहीं? ज्ञान होने के बाद में, आज अगर आप लोगों को ज्ञान हो जाए कि मैं परमात्मा परम ब्रह्म ही हूं, आप स्थित प्रज्ञ अगर बन जाए तो आपका इस जीवन के बाद में नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा। भगवान कहेंगे, बताते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। चूंकि जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम सब ज्ञानी हो सकते हैं क्या जन्म के टाइम में? पेट में रहते रहते ज्ञान हो सकता है, वो बात दूसरी है, वामदेव को हुआ था। मगर जन्म के टाइम में आप अज्ञानी के रूप में जन्म लेते हो, उसके बाद आपको ज्ञान होगा, फिर उसके बाद में शरीर नहीं, खत्म। तो जब हमको अज्ञानी के रूप में जन्म हुआ तो हमारे कुछ कर्मों का फल पक चुका है, उसको हमको भोग करना ही है। हम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों को ही उन फलों को भोग करना होगा, उसको हम नहीं हटा सकते, उसको हम नहीं हटा सकते। तो सुख और दुख ज्ञानी को भी आएगा, यह भी जान के रखना। कभी यह गलती नहीं करना किसी ज्ञानी को, किसी महात्मा को पूछना, महात्मा आप ज्ञानी हो फिर आपको क्यों ऐसा दुख है, ऐसा नहीं करना। तो दुख आएगा कहां से? सोसाइटी देगी, आपके रिलेटिव देंगे, आपके जान पहचान वाले देंगे, वहां से दुख आएगा। गुरुदेव कहते थे ये दुख जो है ना फ्री सप्लाई होता रहता है, कंटिन्यूअसली आता रहेगा, आएगा किसी के जरिए आएगा, भगवान नहीं देने आएंगे, इतना चीज तो गारंटेड है। चतुर्भुज भगवान आया ही नहीं आएंगे कि भाई ये पैकेट आपका है ये ले लो, ये आपका है ले लो, ऐसा नहीं कुछ होगा। तो एक चीज पहला पॉइंट तो आप ये जान के रख लो कि ज्ञानी के जीवन में भी सुख दुख आता है, नंबर वन। नंबर टू, ज्ञानी जो है वो सुख दुख से अनुद्विग्न नहीं होता है, वो अपने को संभाल लेता है, वो सुखी दुखी नहीं होता है, वो अपनी मन की ऐसी परिस्थिति बना लेता है कि उसको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ज्ञानी के मां बाप मरेंगे तो रोएगा नहीं, रोएगा वो भी, मगर बहुत जल्दी निकल के वापस आ जाएगा। और एक फर्क होता है, अखंडानंद महाराज कहते हैं देखो दुख की परिस्थिति आती है, दुख की परिस्थिति का अनुभव कैसे होता है, परिस्थिति का अनुभव हमको वृत्ति से होता है, थॉट से होता है। अगर आप जो है एक एक्सीडेंट देख लेते हो और अगर कोई परिचित व्यक्ति है तो आपको दुख होता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो परिचित व्यक्ति क्या आपके माथे के अंदर घुसा गया, नहीं घुसता है, क्या घुसा आपके माथे में, एक थॉट गया, एक थॉट गया। दुख का थॉट हो सकता है, सुख का भी थॉट हो सकता है। थॉट जो है दो किस्म के हैं, एक हम अहम वृत्ति कहते हैं जो अनुभव करता है, और एक इदम वृत्ति कहते हैं जो हरदम बदलता रहता है कंटिन्यूअसली। अहम वृत्ति मैं जानने वाला हूं, मेरा अहंकार जो है, एक सुख की वृत्ति आई मैं सुखी हो गया, यह वृत्ति कुछ देर बाद चली गई, एक दुख की वृत्ति आई मैं दुखी हो गया, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलता है। दो वृत्ति कौन कौन सी है, अहम वृत्ति इदम वृत्ति। अहम एक कॉमन है ऑलवेज, इदम आता है जाता है, इदम आता है जाता है, आता है जाता है। अभी जैसे हमने प्रेमल जी को देखा, ये प्रेमल जी की वृत्ति आई है, जैसे पारुल जी को देखा प्रेमल जी की वृत्ति गई पारुल जी को आ गई, नीतिका को देखा ये दो वृत्ति गई तीसरी आ गई, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट दिस अहम वृत्ति इज कॉमन, आइडेंटिफाइंग विथ ईच वृत्ति। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि अज्ञानी इदम वृत्ति के साथ में तादात्म करता है, सुखी दुखी होता है। ज्ञानी केवल इदम अहम वृत्ति का साक्षी रहता है, तादात्म्य नहीं करता है, इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता। यू गॉट इट? अज्ञानी इदम वृत्ति के साथ में सुख दुख की वृत्ति के साथ में तादात्म्य करता है, इसलिए वो सुखी दुखी होता है। ज्ञानी वृत्ति को रोकता नहीं है, वृत्ति आएंगी, मगर ही इज जस्ट विटनेसिंग, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आया समझ में, ज्ञानी और अज्ञानी की वृत्ति का? तो दुख की परिस्थिति आएगी मगर ज्ञानी उसके अंदर प्रभावित नहीं होता। समाज में कई लोग को हम देखते हैं बहुत सुखी हैं, बहुत कुछ है उनके पास में, मगर रोते रहते हैं। अभी कल ही हमको प्रमिला जी ने बताया कि कोई एक जयपुर में कौन मार्बल वाला है, उसके पास में 13,000 करोड़ रुपया है। अब बताओ वो दुखी है ना सुखी है? सुख के अंदर बैठा हुआ है, इतने हैं उसके पास में,
अभी तो बहुत दुखी।
अच्छा जब नहीं था तब भी वो दुखी था, उसको परेशान रहता था, बराबर चिंतित रहता था कि पैसे पड़े हुए हैं क्या। सोचो किसी के घर के अंदर 13,000 करोड़ रुपए हो, वो घर छोड़कर कभी जाएगा? दुखी है, उसको हर बराबर चिंता है, पता नहीं क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है, कौन नौकर देख रहा है, क्या कर रहा है। अब कुछ लोग दुखी हैं मगर हंसते रहते हैं, हमारे सब इंडिया में आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर भी डाउन टाउन में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ता है, कुछ गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे जो है फुटपाथ पर ही पैदा होते हैं, मगर हंसते हैं वो लोग, कुछ नहीं है, दुख के अंदर उनका संसार है मगर हंसते हैं, कैसे होता है? सब तादात्म्य की बात है। अगर आपने निश्चय कर लिया कि हम दुखी नहीं होंगे तो आप जानो कि दुख आपका कम हो जाएगा। आपने अगर निश्चित कर लिया कि हम दुखी कभी नहीं होंगे तो दुख आपका कम हो जाएगा, दुख कमजोर पड़ जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन सितो न दुखे न गुरनापि विचल्यते। जिसको वो चीज प्राप्त हो गई ना, जिसको पाने के बाद में और कुछ पाने का नहीं है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, उस आत्म सुख को, उस परमात्मा को, उसको जानने के बाद में उससे बढ़कर और कोई चीज इस दुनिया में है नहीं है, उससे ज्यादा कोई लाभ करने की कोई चीज ही नहीं है। यदि आपने उसको पा लिया, यस्मन स्थितो, अगर आप उसके अंदर स्थित हैं, उस ब्रह्मानंद के अंदर आप स्थित हैं, तब क्या होगा? कहते हैं दुखे न गुरनापी ना विचल्यते, भारी से भारी दुख आ जाए, भारी से भारी दुख आ जाए, गुरु दुख, गुरु दुख मतलब बहुत भारी दुख, ना विचार लेते, हिलता नहीं है वो। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि उसको ये चीज मालूम हो गया कि हर पूरी अनात्म वस्तुओं का स्वरूप क्या है। अनात्म वस्तु का स्वरूप है कि ये चेंजिंग है और पेरिसेबल है, नाशवान है, इसने नाश होना ही है। और अज्ञानी उस लॉ को बदलना चाहता है, हमारे गुरुदेव कहते थे चेंज इज द चेंजलेस लॉ ऑफ द नेचर, और अज्ञानी क्या चाहता है? ज्ञानी चाहता है कि ये लॉ हमारे ऊपर लागू ना हो, हम कभी बुढ़े ना हो, हमारी प्रॉपर्टी कभी ना टूटे, ऐसे ही चाहता है ना, हमारे रिश्ते बने रहे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए वो भारी से भारी दुख, उसने किसको पकड़ लिया? अब वो अनात्मा के साथ में जुड़ा नहीं है, अब वो आत्मा के साथ जुड़ गया। दुख तो अनात्मा देता है, भारी से भारी दुख क्या, मेरा शरीर जाएगा और क्या जाएगा, उसको मालूम है जाएगा। ये भगवान का भी शरीर भगवान को छोड़ना पड़ता है, क्यों? चेंज इज द चेंजलेस लॉ ऑफ द नेचर, भगवान भी उस लॉ को फॉलो करते हैं, वो भी शरीर को छोड़ते हैं। देखो हम लोगों ने कई विकलांगों को देखा हुआ, बहुत काम करते हैं, और कई जिनके पास अंग जो है बलिष्ठ है, बेकार बैठे हैं, कुछ नहीं करते, ऐसे भी बहुत से लोग हैं। दुख का सोर्स कितने तरह से, कहां कहां से दुख आता है, तो तीन है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक क्या है? जो भगवान से आता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी आ गया, ड्राउट हो गया, फ्लड आ गया, क्या हम रोक सकते हैं उसको? नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। आदि भौतिक, सराउंडिंग के लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, सराउंडिंग के ऊपर हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं, जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, और नियंत्रण हो सकता है। ऐसा हम लोग के ब्रह्मचारी कोर्स में हुआ था, पवे के अंदर हम लोग रहते थे, बगल में 5-स्टार होटल है और वहां पर शादी होती है, शादी के सीजन में रोज शाम को धमाका, और 20,000 वाट का वो स्पीकर लगा के दुम दुमा दुम दुम दुमा दुम कर रहे थे, हम लोग का बस पढ़ाई लिखाई खत्म। तो हमारे आचार्य और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उनसे जाके मिले, भाई हमारा यहाँ पर ब्रह्मचारी कोर्स चल रहा है, आप ये क्या कर रहे हो, नाच गान कर रहे हो? बोले हम आपको मना नहीं करते मना नहीं करते, मगर आप सुनो, मेरे को मत सुनाओ, आप इतना कर दो कि आप मेरे को मत सुनाओ, आप स्पीकर के मुंह जो है हमारे आश्रम की तरफ मत करो, आप हॉल के अंदर बजाओ, जो करना है करो, आप लोग नाचो गाओ, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। वो बेचारे मान गए। उसके बाद जो है हमको देखो आदि भौतिक पर नियंत्रण है, आध्यात्मिक जो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है ये आध्यात्मिक है। सुखेशु विगत स्प्रिया, सुखेशु सुखद स्थिति बनी रहे, ऐसा वो कभी नहीं चाहता ज्ञानी, क्योंकि उसको मालूम है ये जाने वाला है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे मान लो इंडिया में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, अब एक बार मान लो किसी कारण आपको फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिली, आपको जाना है, आप सेकंड क्लास की टिकट में बैठ गए, बैठ तो गए, अब बराबर जो है वो फर्स्ट क्लास का चिंतन आपको आता रहता है, क्यों नहीं मेरा मिला, को मेरे को फर्स्ट क्लास में जाना था। विगत स्प्रिह स्थित प्रज्ञ, विगत स्प्रिह उसको वो क्रेविंग नहीं है कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, ऐसा क्रेविंग नहीं है। उसका क्या है फॉर्मूला, आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तं न वारेत, आ गया स्वागत कर लो, सुख आ गया है स्वागत करो। मैंने आपको बता रहा था ना, अगर प्रारब्ध में पिज्जा आ गया खा लो, स्वागत करो। और चला जा रहा है बोलो रोको नहीं, जा रहा है लेकर जाओ। महात्मा लोग पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं। अच्छा साधारण लोग क्या करते हैं, वो दुख का स्वागत नहीं करते, सुख का स्वागत करेंगे, मगर महात्मा लोग ऐसा नहीं करते हैं। सुख दुख हमारे यहां आता जाता रहता है, मित्र आया सुख है, कोई दुश्मन आया दुख आ गया, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, स्कूल बंद है छुट्टी, मास्टर नहीं आया होमवर्क करना होगा दुख आ गया। बीत राग भय क्रोध, बीत राग भय क्रोध जिसमें राग भय और क्रोध नहीं है। देखो राग जो है ना अटैचमेंट है, यही मूल है, जिसके साथ में आपका अटैचमेंट है, आपका घर के साथ में, आपके परिवार के साथ में, आपकी वस्तु के साथ में, आपकी धन के साथ में, वो अगर छूट जाएगा तो आपको छूट नहीं जाए भय, कोई लेके चला जाएगा डर लगता है भय। और जिस चीज के साथ में आपका राग है, आपकी घड़ी के साथ में आपका राग है, किसी ने छू दिया क्रोध आ गया, अरे तुमने मेरी घड़ी क्यों छू दी, मेरे शर्ट को क्यों छुआ, मैला कर दिया तुमने, क्रोध आ गया। अगर किसी को क्रोध आता है ना तो उसका मूल कारण क्या है पता है आपका, राग है। क्रोध का मूल कारण राग है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो राग को कंट्रोल कीजिए, अटैचमेंट को कंट्रोल कीजिए। हम जो है ना टेम्पोरेरी काम करते हैं, उसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4 गिनो। जब तुमको गुस्सा आ जाए ना, हम बच्चों को सिखाते हैं उस टाइम में 1 से लेकर 10 गिनो, दूसरे कमरे में चले जाओ, नहीं तो बोलेंगे गिलास पानी पियो। इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे साइंस ये है कि इदम वृत्ति बराबर बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। क्रोध की वृत्ति भी इदम वृत्ति है, कुछ देर तक उसको पकड़ के रखो चली जाएगी, थोड़ा सा डिले कर दो निकल जाएगी। तो हम लोग उसी को सबको यही कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, 10 तक गिनो, दूसरे रूम में जाओ। वैराग्य क्या करता है, वैराग्य एव अभयम, वैराग्य जो है वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य अभय देता है। जिसको वैराग्य हो गया, वैराग्य किससे होगा, आत्मा से ना अनात्मा से, हाँ वैराग्य आत्मा से मत कर बैठना, वो तो अज्ञानी अवस्था है। वैराग्य अनात्मा से करना है। जिसको वैराग्य अनात्मा से हो गया उसको तो और दुख ही नहीं मिलेगा, उसको तो अभय हो गया। अब क्या जाए बाण के अंदर सब क्या हमको लेना है, दुनिया जाए खत्म। आप किसी महात्मा से पूछो जाके कि इंडिया ने डीमोनेटाइज कर दिया, बोले जाए भाण में हमको क्या है, यहाँ ये प्रेसिडेंट आ गया बोला भाण में जाए दोनों, हमको क्या लेना है। फक्कड़ बाबा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए दोनों ही अनात्म वस्तु है, दोनों ही अनात्मा है। देखो शरीर से भी हम लोग का राग है, हम सब मृत्यु से डरते हैं। असली डर पता है किसका है, मृत्यु का नहीं है, असली डर मृत्यु का नहीं है। डर इस चीज का है कि हमारे परिवार वाले छूट जाएंगे, धन छूट जाएगा। अगर यमराज आपको ये आके बोले कि आप अपने परिवार के साथ में अपने धन के साथ में मेरे पास आओ, आप सब जाओगे, कोई दुख नहीं है, बुलाए हमारा परिवार वहां भी चलेगा, वहां भी हमारा ही राज रहेगा। स्वामी जी लोग कहते हैं जब हम लोग किसी घर में जाते हैं ना, बच्चे बहुत अटैच हो जाते हैं, तो किसी बच्चे को बोलते चलो मेरे साथ चलो कल मैं जा रहा हूं, बच्चा फिर छिपता रहता है, दूसरे दिन बच्चा छिपना शुरू करेगा, स्वामी जी ले जाएंगे। जब वो कहता है तुम्हारे माता पिता भी मेरे साथ आएंगे, फिर बच्चा आता है, माता पिता आ रहे हैं, फिर हमको क्या डर है। उसी तरह से शरीर छूटने का हमको डर नहीं है, भय नहीं है, भय किसका है, ये सब छूट जाएंगे इसलिए हमको भय होता है। देखो लोगों को जनरल भय भी है, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, भीड़ का भय, दूसरा भय भी होता है अपमान का भय, मेरा मान चला गया, मेरी पोजीशन चली गई, ये सब भी भय होते हैं लोगों को। तो इस श्लोक के अंदर हमको क्या बताया गया, लक्षण स्थित प्रज्ञ का असंगता। स्थित प्रज्ञ क्या है, असंग है, दुख आ रहा है उससे भी असंग, सुख आ रहा है उससे भी असंग। पिछले श्लोक में क्या देखा था हमने, देखो आप लोग अभी भूल जाते हो, भीष्म पितामह 60 जीवन याद था उसको, आपको 60 मिनट आगे याद नहीं रहता है। आत्म संतुष्टि कामना रहित प्रजाति यदा कामान सर्वान है 55 नंबर श्लोक में, और 56 नंबर श्लोक में असंगता समत्व, वृत्ति आएगी वृत्ति के साथ में आप संग नहीं करो। ज्ञानी चूंकि वह बीत राग भय क्रोध है उसमें उद्विग्नता और स्पृहा नहीं है, इसलिए उसकी वाणी, देखो ये इसका आंसर अभी निकल रहा है, किम प्रभासे, उसकी वाणी के अंदर उद्विग्न नहीं निकलेगा। सुख आया या दुख आया, बीत राग भय क्रोध हो चुका है उसका, इसलिए उसकी वाणी में स्थित प्रज्ञ सका भाषा किम प्रभासित, कैसे बोलता है, क्योंकि उसका मन शांत है। देखो स्पीच का कंट्रोलर कौन है, कॉज कौन है, मन है भगवान, किंतु कब किंतु उसके एक मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उसका मन शांत है इस वास्ते अनुद्विग्न, उसके जो भी वाक्य निकलेंगे अनुद्विग्न, वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। एक श्लोक इसके अंदर और है, वो देख लेंगे हम अगले दिन, तो हमारा किम प्रभासित का उत्तर आ जाएगा। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।
Saturday, na?
Saturday afternoon.
हाँ माँ उसका सोचा कुछ आपने
हाँ मैं सोच रही आर्थी उसका
आर्थी जंबल कर सकते हैं हाँ
इसका माउंटेन कैसे वाइट होता है